शांति, गुड मॉर्निंग। कल जब सचिन भाई ने बोला कि आपको बोलना है ऑल इज वेल पे, तो सबसे ज्यादा तो मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगी और मुझे लगा कि शायद ये राइट मोमेंट है ये मंत्र को यूज करने का कि ऑल इज वेल। सो शायद पहले कभी नहीं बोला है ऐसे, दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि किसी टॉपिक पे ऐसे बात कर रहे हैं। सो सोचने लगी कि क्या है ऑल इज वेल। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इसका मतलब होता है एवरीथिंग इज इन अ गुड एंड एक्सेप्टेबल स्टेज, सब कुछ अच्छा है और स्वीकार्य है। दुनिया में भी सब जानते हैं ऑल इज वेल बोलना, उनके पास शायद लॉजिक नहीं है पर फिर भी उनका ऑल इज वेल काम करता है। तो मैं सोचने लगी कि ब्राह्मणों के परिप्रेक्ष्य में, हमारे दृष्टिकोण में ऑल इज वेल का आखिर मतलब क्या है। सुपरफिशियली तो बहुत बोल रहे थे ऑल इज वेल, सब ठीक है, तो लिखना शुरू किया। लिखने की आदत नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर लिखना शुरू किया तो ऐसे सोचने लगे कि क्या है ऑल इज वेल। तो थॉट, जब पहला थॉट आया तो यही था कि ऑल इज वेल अर्थात ड्रामा परफेक्ट है, ड्रामा एकदम ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, शायद पढ़ के बोलूंगी। पहला पॉइंट जो था कि ड्रामा परफेक्ट है। दूसरा ऑल इज वेल का ये मतलब था जो मुझे समझ में आ रहा था कि संतुष्टता भी ऑल इज वेल है। मैं संतुष्ट हूं जीवन से, परिस्थितियों से, लोगों से, चुनौतियों से। तो ऑल इज वेल अर्थात संतुष्टता, कि मैं एक संतुष्ट आत्मा हूं। नेक्स्ट पॉइंट था ऑल इज वेल अर्थात पूर्ण विराम, नो मोर क्वेश्चंस, नो मोर कंफ्यूशंस, नो मोर वेस्ट थॉट्स। इन सब बातों को पूर्ण विराम देने का एक बहुत अच्छा साधन है ऑल इज वेल। नेक्स्ट पॉइंट जो समझ में आया, नो मोर नो लेस, जस्ट परफेक्ट, न कम न ज्यादा, जितना है एकदम ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझ में आया, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, किसी की कोई उपेक्षा नहीं, किसी का किसी से किसी की कोई आलोचना नहीं। ये भी ऑल इज वेल है जब आप विचारों को धीरे धीरे कम करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझ में आया कि ऑल इज वेल मंत्र है। दुनिया में बोलते हैं कि मंत्र को जितनी बार यूज किया जाए, जितनी बार ज्यादा बोला जाए, उससे सिद्धि प्राप्त होती है। तो ऑल इज वेल मंत्र को अगर दिन में कई बार याद किया जाए तो इससे जो सिद्धि प्राप्त होती है वो है स्टेबिलिटी, स्थिरता, स्थिर प्रज्ञ मन, एकदम चित्त शांत और ठहराव। ऑल इज वेल न्यूट्रलाइजर है। भय और एंग्जाइटी की सिचुएशंस में हमें न्यूट्रलाइज करता है। बहुत बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जब पास्ट की एंग्जाइटी, फ्यूचर का भय, तो उस समय ऑल इज वेल मंत्र काफी काम करता है सिचुएशंस को डील करने के लिए। ऑल इज वेल अर्थात नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई द्वंद्व नहीं, न खुद से, न औरों से, न बाबा से, न ट्रामा से। कई बार जब हमारी मनपसंद सिचुएशन नहीं आती है तो हम बाबा के साथ भी कभी कभी फाइटिंग मोड में आ जाते हैं और कभी बट अगर ऑल इज वेल बोल दिया जाए तो शायद उस समय बहुत सारे जो विचार चल रहे हैं उनकी स्पीड को धीरे किया जा सकता है। फिर ऑल इज वेल एक टूल है, जैसे मंत्र है वैसे ये एक यंत्र है जीवन को सहज, सरल और सफल बनाने के लिए। इस टूल को हम बहुत तरीके से और बहुत बार यूज कर सकते हैं। ऑल इज वेल आत्मा की बैटरी को ड्रेन आउट होने से बचाता है, क्योंकि जब हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं तो विचारों की गति बहुत बढ़ जाती है, और जितना विचार चलते हैं उतना एनर्जी ड्रेन आउट होती है। तो अगर ऑल इज वेल का उस समय प्रयोग कर लिया जाए तो हम बहुत सारी शक्तियों को खोने से बचा सकते हैं, या यूं कहें कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ऑल इज वेल अर्थात सब कुछ न्यायकारी है, एवरीथिंग इज जस्ट, कुछ भी अन्याय नहीं है। क्योंकि लाइफ में ऐसी बहुत सिचुएशन आती है, इवन बीइंग अ ब्राह्मण, जब हमारा विश्वास, हमारा निश्चय, हमारा फेथ कम होने लगता है, खोने तो नहीं लगता है लेकिन कम होने लगता है, इसीलिए शायद स्ट्रेसफुल होते हैं। और फिर हमें जीवन में कई बार ऐसा भी लगता है जब ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम लोनली हैं, या डिप्रेशन है, या बहुत टायर्ड फील करती है सोल। अगर ऐसे में मन को बहुत प्यार से समझा दिया जाए छोटे बेबी की तरह कि सब ठीक है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, इन परफेक्ट सिचुएशन में परफेक्शन फील कराने का साधन है। आई स्टिल रिमेम्बर एक बार एक प्रोग्राम था और मुझे बैक स्टेज मैनेजमेंट की जिम्मेवारी दी थी, और बैक स्टेज मैनेजमेंट माना सब कुछ परफेक्ट, और सिंस फ्यूचर ऑफ पावर में है पिछले 7-8 साल से, तो निजार भाई स्टेज पे थे और स्पीच कर रहे थे, और फॉरेनर्स को सब कुछ बहुत परफेक्ट चाहिए होता है। तो जैसे ही माइक हाथ में लिया, इतनी जोर से आवाज हुई, और करीब मैं समझती हूँ 2000 लोग बैठे थे, तो कुछ बोले नहीं, और जब बोलने लगे तो माइक काम नहीं कर रहा था, और जब माइक काम किया तो फिर बहुत जोर से आवाज हुई। तो ये मतलब सिर्फ खड़े थे उस स्टेज पे, एंड फाइनली माइक भी काम करने लग गया, सब कुछ ठीक हुआ। तो उनको एक भाई मिला बाद में आके, तो उसको उन्होंने क्या बोला ये कुछ भी याद नहीं था, बहुत अच्छा ज्ञान में भी चले उसके बाद वो ब्रदर। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि कैसे सब कुछ सिचुएशन इम्परफेक्ट थी, ना माइक काम कर रहा था, ना कुछ भी ठीक नहीं था, और मैंने आपको जो स्टेबल खड़े हुए देखा 5 मिनट, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था। तो आई एम श्योर ही मस्ट हैव थॉट एट दैट मोमेंट, दैट उन्होंने जरूर उस समय सोचा होगा कि ऑल इज वेल। ऑल इज वेल का एक पॉइंट है कि ये नकारात्मकता की दीमक को दूर करने का कीटनाशक है, पेस्टिसाइड है। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, सचिन भाई में भी करेक्ट कर देंगे, कि हमारे हमारे शरीर में करीब 820 तरह के टॉक्सिन्स होते हैं। जब जब हम नेगेटिव सोचते हैं या सिर्फ बोलते भी हैं तो ये रिलीज होते हैं। तो ऑल इज वेल अगर बोला जाए तो ये ऐसी सिचुएशंस में पेस्टिसाइड्स का काम करता है। ऑल इज वेल मन को मजबूत एम्पावर करने की मेडिसिन है, मन को हील करने की मरहम है। जितना खुद से हम बोल सकते हैं ऑल इज वेल, जितना खुद को कन्विंस कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ये एक डायलॉग है खुद के साथ। और अगर ये मेडिसिन राइट टाइम पे खा ली जाए, मन को हील और एम्पावर और स्वस्थ करने की, तो ऐसा समझते हैं कि वो वाली मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ऑल इज वेल इज अ मेडिसिन। ऑल इज वेल माना ठंडी हवा का झोंका। बहुत सारी ऐसी दुखी और परेशान आत्माएं हैं, उनको शीतलता प्रदान करने का ये साधन है। ऑल इज वेल बाबा की ब्लेसिंग्स को कैच करने का साधन है। क्योंकि जब बहुत सारे विचार नहीं चल रहे हैं, दैट इज द टाइम व्हेन वी कैन रियली कैच बाबाज ब्लेसिंग, वी कैन रियली कैच बाबा की जो टचिंग्स हैं, हम कैच कर सकते हैं। एक बार ध्यान है, हम बाबा के कमरे में बैठे थे, और मुझे बात करने की बहुत आदत है, तो जब बाबा के सामने बैठे तो शुरू हो गई ऐसा 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 ऐसा। तो मुझे कभी कोई ऐसे खास युग के बहुत एक्सपीरियंस या कोई ऐसा कुछ नहीं. मैं अपने आप को बहुत ऐसा समझती थी कि योग माना क्या, फॉर मी योग माना मस्ती. तो मैं पापा के सामने बैठी थी जाके, और तो एकदम से जैसे मुझे ऐसी, क्योंकि उस समय धीरे धीरे मुझे लगा कि जैसे विचार कम हो गए, और बाबा बोल रहा था बच्ची मेरी भी तो सुन. तो आई थिंक उस समय भी शायद ऑल इज वेल, मतलब मेरे विचार शायद धीरे इसी वजह से हुए होंगे कि ठीक है सब कुछ, लेट मी लिसन टू बाबा. सो ब्लेसिंग्स और कैचे को कैच करने का साधन है. ऑल इज वेल अर्थात चित्त संपूर्ण रूप से शांत स्थिर. आज की मुरली में भी आज बाबा ने जो वरदान दिया है कि दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने वाले वरदानी और महादानी मूर्त भाव. बाबा ने कहा आगे चल के ऐसा समय आएगा कि वाचा से सेवा नहीं हो पाएगी, तो अगर अपनी दृष्टि से दिव्यता की शक्ति से सेवा करनी है तो मन में बहुत ठहराव चाहिए, मन की स्थिति बहुत शांत चाहिए, और मन की स्थिति को शांत करने का साधन है सब कुछ ठीक हो रहा है. एक बार की बात है, एक प्रोग्राम था फरीदाबाद में, फ्यूचर ऑफ पावर के, और हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो थे ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के हेड थे आर.एन. सिंह, अभी भी हैं शायद. तो उनको सेंटर पे किसी को लेने जाना था, उस दिन शायद उनके पास कुछ आने का इंतजाम नहीं था. तो एक छोटा भाई जो ड्राइवर थे वो उनको लेने गए थे. तो जब वो वापस आ रहे थे, बहुत पुराने भी नहीं थे, यंग ब्रदर थे, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे, बहुत ज्ञान भी उनको शायद ठीक ठाक ही था. तो जब वो उनको गाड़ी में लेकर वापस आ रहे थे जहां प्रोग्राम होना था, तो वो जो भाई है आर.एन. सिंह, वो काफी ऊपर नीचे हो रहे थे क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे. दिल्ली था, फरीदाबाद का प्रोग्राम था, तो बहुत रश था, तो वो बार बार ऊपर नीचे होके कर रहे थे. पर ये भाई को ज्यादा कुछ नहीं आता था, ऑल इज वेल बोलना आता था. तो ये भाई बार बार उनको कह रहा था आप चिंता नहीं करो, फिक्र नहीं करो, मैं आपको टाइम से पहुंचा दूंगा. पर कहते कैसे पहुंचा दोगे, ये ट्रैफिक वो ट्रैफिक. कहता आप वरी नहीं करो, मैं टाइम से पहुंचा दूंगा. एंड दिस ब्रदर इज एंजॉइंग ड्राइविंग एंड मस्त. एंड एक ही बात आती थी उसको ज्यादा नहीं, उसने अपना अनुभव सुनाया कि ऑल इज वेल, सब ठीक होगा. तो वो जो आर.एन. सिंह थे वो उसको लगातार उनको नोटिस कर रहे थे. तो जब स्टेज पे आए तो हमने सोचा शायद सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, शायद कुछ इंस्पायरिंग बात कहेंगे. उन्होंने अपनी जो स्पीच थी वो शुरू की वो भाई से. उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज में एक वो व्यक्ति जो इतनी छोटी सी सेवा कर रहे हैं, जो और वो उन्होंने इतने अच्छे स्टेबिलिटी के साथ की, और मुझे ये मंत्र का एक्चुअली मतलब बता दिया, ऑल इज वेल, तो यहां पे कितना कुछ हो सकता हो. तो उन्होंने बोला कि मैं तो पता नहीं मीडिया एसोसिएशन का हेड हूं, लेकिन मुझे यहां से शुरू करनी पड़ेगी अपनी सीखने की शुरुआत. तो काफी इंस्पायरिंग था ऑल इज वेल. फिर ऑल इज वेल ज्ञान का सार है, एसेंस ऑफ नॉलेज है. क्योंकि हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे तो मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑल इज वेल सेवा है. बाबा ने कहा था जब तक हम अपने विचारों पर काम नहीं करते, जब तक हम खुद को शांत और स्थिर नहीं करते, तब तक हम ना वाइब्रेशंस फैला सकते हैं, ना किसी को शांति की अनुभूति करा सकते हैं. ऑल इज वेल पे थोड़ी सी चर्चा की थी, ज्यादा कुछ इससे ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए. थैंक यू सो मच ओपशन. क्योंकि बाबा के ज्ञान के जो पॉइंट्स हैं कि जब कुछ भी ठीक नहीं है, नहीं रिपीट नहीं करते रहना है. क्योंकि ऑल इज वेल रिपीट तो दुनिया वाले भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे रिपीटेशंस के पीछे लॉजिक्स है. जैसे ड्रामा परफेक्ट है, ये ड्रामा बाबा को बहुत पसंद है. जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि अच्छे से अच्छा बनाने वाला बाबा साथ में है. सो आई थिंक कुछ होमवर्क उस समय, उस ऑल इज वेल बोलने से पहले की जो प्री स्टेज है, कि वो तैयारी के साथ जब हम ऑल इज वेल बोलेंगे तो शायद काम करेगा, नहीं तो सचिन भाई इज क्वाइट राइट कि वो शायद पैरट जैसे ही हो जाएगा कि ऑल इज वेल. पहुंचा दिया था टाइम से पहुंचा था और उनका मंत्र था ये ऑल इज वेल बोलने का। नहीं पहुंचते तो भी ऑल इज वेल ही होता, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा उनको बचा रहा होता, कुछ किस मिस कुछ ऐसा होने वाला होता तो भी शायद वो ठीक हो गया होता। सो पहुंचा वो भी ऑल इज वेल, नहीं पहुंचा वो भी ऑल इज वेल। और कई बार ऑल इज वेल को कई बार हम मिस इंटरप्रेट भी कर देते हैं, कहते ना कभी इसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं। ऑल इज वेल अच्छा हो गया। एक बहुत भोली माता थी, उनके हस्बैंड ज्ञान में नहीं चलते थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, पैर फ्रैक्चर हो गया था। बहुत भोली इनोसेंट होती है कुछ मत, तो जाके उनको बोलती सब अच्छा ही हुआ है। तो शायद कहाँ यूज करना है और ऑल इज वेल के साइड इफेक्ट क्या है। कई बार हम कुछ भी ठीक नहीं कर रहे होते हैं, लापरवाही से चल रहे होते हैं, श्रीमत पे और मर्यादाओं में थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, आई थिंक उस समय ऑल इज वेल ठीक नहीं है। ऑल इज वेल दो तरह से यूज किया जाता है। कई बार आई स्टिल रिमेम्बर, एक बार हम मुरली सुन रहे थे शांतिवन में, और मेरे पास एक मदर बैठी थी, बहुत अच्छी मुरली नहीं शायद कोई क्लास करा रहे थे, तो वो माता मुरली सुनती जाए और ऐसे करती जाए, आई सेड क्या हो गया इनको, तो वो गिल्ट ट्रिप में जाती जा रही थी कि हाँ मैं ये भी नहीं करती हूँ, मैं ये भी नहीं करती हूँ, मैं ये भी नहीं करती हूँ। तो शायद महसूस था और गिल्ट ट्रिप में जाना, ये भी दो अलग अलग चीज है। महसूस करके उस बात को ठीक कर लिया जाए तो ठीक है, लेकिन सो ऑल इज वेल मेरे ख्याल से गिल्ट ट्रिप में जाने से भी बचाता होगा कि हम वो रॉन्ग साइड पर नहीं चले जाए, और केयरलेस नहीं बने वहां पे हम ऑल इज वेल को यूज नहीं करें, क्योंकि कई बार बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा को भी उल्टी तरह से यूज कर लेते हैं। सो यहाँ पे वो जो परखने की शक्ति है वो बहुत पावर टू डिसर्न बहुत काम आती है कि किस चीज को कब यूज करना है। तो ऑल इज वेल और कहते हैं परखने की शक्ति और ये निर्णय करने की शक्ति भी तब काम करती है तब विचार जो स्पीड है वो कम हो, और विचार और स्पीड तभी कम हो सकते हैं जब हम अपने आप को समझा दें। क्योंकि हाँ दूसरों को, क्योंकि ये डायलॉग खुद के साथ है, ये वाला बहुत पावरफुल डायलॉग है ऑल इज वेल। थैंक यू। शरीर का नाम नीतू है और बचपन से ज्ञान में है, लेकिन मुरली सुनाने और कोर्स कराने के अलावा दूसरा काम ये कभी ऐसे बोलने का अपॉर्चुनिटी तो मिली लेकिन बोला नहीं। सो फिर पिछले 7-8 वर्षों से फ्यूचर ऑफ पावर में कम्युनिकेशन का सर्विस है, और कम्युनिकेशन एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द इवेंट ये देखते हैं। हम वैसे तो बॉम्बे से हैं, बॉम्बे लोखंडवाला, और अभी रिसेंटली अभी जयपुर में रहते हैं, और पिछले 7-8 सालों में 67 देश और विदेश को मिला के इतने शहरों में प्रोग्राम करने का अपॉर्चुनिटी मिली। सो किसी भी प्रोग्राम से पहले 6-7 दिन पहले जाते थे उस सेंटर्स पे, और वो जो लौकिक ट्रेनिंग होती है क्योंकि बहुत परफेक्शन के साथ करना होता है ये प्रोग्राम, तो ये मेन ड्यूटी है कि अभी कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ पावर में। लास्ट जो इवेंट हुए वो अमेरिका में हुए थे, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एंड शिकागो, तो वहां जाने की अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत उधर सीखने को मिला। और अभी भी खास अभी इस समय जो आए हुए बाबा मिलन और निसार भाई आए हुए, तो उनके साथ मीटिंग्स हैं क्योंकि बहुत सारे और बाहर इंटरनेशनली काफी सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो स्पेशली उस सेवा के लिए आए हुए हैं। और अपॉर्चुनिटी मिली कि POM की वजह से ज्ञान सरोवर में बहुत रश था, तो शायद बहुत सालों के बाद पांडव भवन में रहने का मौका मिला। और मैं सोच रही थी कि कोई क्लासेस तो मिलती नहीं, बिकॉज मॉर्निंग से इवनिंग तक मीटिंग्स में ही रहते हैं, कुछ ना कुछ काम रहता है। तो जब पता चला कि सचिन भाई की मॉर्निंग की क्लास होती है 5 बजे, तो आई थॉट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी की क्लास भी मिल जाएगी। सो नितिन भाई है मेरे साथ, युगल है, और ये मीडिया कॉन्फ्रेंसेस जो फ्यूचर ऑफ पावर में होती है, और जितनी लॉजिस्टिक्स की जो सेवाएं हैं, तो हम एज ए युगल ये सेवा कर रहे हैं, और बंजारी की जैसे रहते हैं दो सूटकेस में, क्योंकि कभी भी कहीं भी भागते रहना पड़ता है, क्योंकि जब 60 शहर इंडिया के विजिट किए, और तो और बाकी लगातार जो कम्युनिकेशन चलता रहता है फ्यूचर ऑफ पावर का, तो वो करते हैं। थैंक यू सो मच। कोई मौका, कोई उपाय नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था आने का, क्योंकि मम्मी जाती थी सेंटर तो हमको तो साथ जाना ही था, तो हमारे पास चॉइस ही नहीं थी कि ज्ञान में चलूं कि नहीं चलूं। और जब बड़े हो रहे थे तो मतलब हमारे लिए जैसे पेस्ट करना होता है पेस्ट और ब्रश, ऐसे हमारे लिए मुरली सुनना होता था कि बैठना ही है कुछ भी हो जाए। हम मम्मी के डर से, ऑफकोर्स मम्मी के डर से। और जब कभी हम बोलते थे बीमार है, क्योंकि बचपन में कुछ ज्यादा तो समझ आता नहीं था, तो मम्मी कहती थी लेट जाओ पीछे जाके, पर बैठना है, कुछ भी हो जाए बैठना है। तो वो डरा धमका के मम्मी ने हमको हमेशा मुरली सुनवाई है। ऐसे मम्मी जयपुर में रहती है और बाबा ने उनको, उनका नाम गीता है और उनको जैसे वरदान ही मिला है, 3-4 सेंटर और बहुत सारी गीता पाठशालाएं खोलने के निमित्त बनाया। सो छोटे थे, गांवों में पापा की पोस्टिंग होती थी, पापा अभी रिटायर हुए हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, तो हमको 4th-5th स्टैंडर्ड में हमें ध्यान है मम्मी शॉल पहना के, व्हाइट शॉल पहना के, शायद आई एम श्योर मम्मी नाटक करती होंगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और हमको कहते थे जाओ 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 मुरली सुनाओ। तो बहुत छोटे से थे तब से ये सेवाएं करने को मिला था। पर बहुत बार दीदी कहती थी कि 18 जनवरी पे कुछ बोलो, हाँ कैसे नहीं है, बोलना बोलना मेरा काम है, मुझे काम बता दो क्या करना है। लेकिन कल तो मैं फंस गई। तो मैंने उनको, सचिन भाई को भी बोला तो डेंजरस काम बता दिया आपने बोलना। बट शायद कितना अच्छा हुआ ना कि लिखा भी और उस पर सोचा भी, वरना ऐसी टाइम नहीं मिलता। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। शरीर का नाम नितिन है और अभी पिछले 12 साल से बाप दादा की गोद में खेल रहे। जस्ट टू टेक फ्रॉम जहां से नीतू ने लीव किया है कि यू नो, एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूं कि ये सेवा में कैसे आए। तो बाबा ने हमको फ्री रखा था, ज्ञान में चल रहे थे, तो ऑब्वियसली देयर वर नो इश्यूज, नो किड्स और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। तो एक दिन ऐसे ही बैठ के हम लोग बात करते, बाबा इतना फ्री रखा है ना, और ये संगम योगी एक समय है जब हम अपने ब्राह्मण परिवार को मिल सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण परिवार सिर्फ संगम युग पे होता है। और हम यू नो ब्रह्म कुमारी रिच, रिचेस्ट ऑफ द रिच ना, तो हमारे बाप के कितने घर हैं, 9000 प्लस, ठीक है, कितने भाई बहन हैं, 4.5 लाख भाई और 4.5 लाख बहन, अप्रोक्सीमेटली अगर हाफ हाफ है तो। अब इतने परिवार को मिला किसे जाए, और ये छोटा सा पीरियड, बिकॉज 33 इयर्स का जब था तब आया है ना। और बाबा हर बार बोलता कि बस अभी इट्स द एंड टाइम। तो ऐसे एक संकल्प दिया था कि बाबा के ऐसे कुछ सेवा दीजिए कि जाके सब जगह अपने परिवार का तो मिले, कम से कम एटलीस्ट एक बार ग्लांस तो एक्सचेंज हो जाए। तो जैसे बाबा बोलता ना कि जो भी आपकी प्योर डिजायर होती है ना, तो उसके लिए हर समय तथास्तु होता है। विद इन अ वीक्स टाइम हमको एक सेवा मिली कि जो सिस्टर आ रही हैं इंट्रोडक्शन देने के लिए फ्यूचर ऑफ पावर का, सो आई हैव टू टेक हर अराउंड। और वहां से शुरू हुआ, देन आर बायोडाटाज वेंट टू द एडवाइजरी बोर्ड, और जो भी कुछ हुआ बाबा ने जो भी कुछ किया। सो जैसे बताया 66 सिटीज एंड हर जगह अलग अलग अनुभव। सबसे बड़ा अनुभव वॉज आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ पीपल, अपने अंदर है ना, इंट्रोवर्ट होकर रहना, सेफ जोन में रहना, संस्कार मिलाना जरूरत ही नहीं है, जब किसी से मिलना नहीं है तो संस्कार मिलाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे लिए पर्सनली जो सबसे बड़ा चैलेंज था एज अ ब्राह्मण एंड स्टिल एट टाइम्स इट कम्स अ पुराना संस्कार है, संस्कार मिला के चलना, यू नो। सो वहां पे अच्छी ट्रेनिंग मिली, और क्योंकि इवन बिफोर ग्रेजुएशन सिर्फ बिजनेस किया था, तो इट वॉज ऑल अबाउट बॉसिंग अराउंड, नॉट टू लिसन, है ना। और यहां पे तो आप शायद, मैं इस टाइम पे 3 साल का ही था एज अ स्टूडेंट इन ब्रह्म कुमारीज, और आप मिल रहे हैं सब जोन हेड और वो, और पता नहीं होता ना कि मतलब एक्चुअली व्हाट पोजीशन इट इज। तो व्हेन यू योरसेल्फ आर इनटू ईगो, यू एक्सपीरियंस कि वो ईगो से आ रहे हैं, है ना। तो वो जजमेंट और वो सब बाबा ने ऐसे फटाफट सब कट करके ईजी कर दिया। हाँ, तो संस्कार मिलाना वॉज अ बिग चैलेंज एंड बहुत सारे मिरेकल्स हैं, आई विल जस्ट शेयर वन, है ना। जहां पे मैं कुछ छोड़ा था कैलकटा में, प्रोग्राम था और जो वेन्यू थी पब्लिक प्रोग्राम की वो ऑफिसर्स मेस था, आर्मी का ऑफिसर्स मेस। और हम लोग इसमें प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है कि इसमें डबल विदेशी आते हैं और शेयर करते हैं अपने अनुभव विद यू नो इम्पोर्टेंट पीपल जो 20 डिफरेंट प्रोफेशन से आते हैं। तो हम लोग पहुंचे, थर्सडे का दिन था एंड सैटरडे को पब्लिक प्रोग्राम था, संडे को पब्लिक प्रोग्राम था। तो सारा एगर और आर्नल्ड भाई जो यूके के हैं वो आए थे, तो लेके वो फैसिलिटेटर्स थे और मास्टर ऑफ सेरेमनीज थे संडे के प्रोग्राम के लिए। तो उनको लेके हम लोग पहुंचे वेन्यू पे ऑफिसर्स मेस में। तो एक सिपाही आए भाग के, उन्होंने बोला आप क्या कर रहे हैं? बोले क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम की तैयारी कर रहे। बोलते ये आप इनकी परमिशन दिखाई है आने की? तो देन जो हमको हेल्प कर रहे थे उनके बारे में बोले साहब इनको परमिशन चाहिए शायद कोई। तो इनकी परमिशन तो ली नहीं हमने। बोलता अभी आप लेके इनको, इनका एक्शन ऐसा था अभी लेके इनको बाहर जाइए आप। नाउ थर्सडे है एंड द सिचुएशन वॉज इन्विटेशन सारे जा चुके हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 1100 गेस्ट एंड देर इज नो परमिशन फॉर द मास्टर ऑफ सेरेमनीज टू कंडक्ट द प्रोग्राम। और हमारे चार और विदेशी भाई बहन जो अपने अनुभव शेयर करने वाले। फिर एक्सरसाइज शुरू हुई कि जितने भी लोग हैं सबके पासपोर्ट दीजिए, उनका वीजा दीजिए, इट विल गो टू द नॉर्थ गेट दिल्ली में, डिफेंस का क्लियरेंस चाहिए ये। और हमारी साथ मीटिंग्स चल रही हैं और बार बार दिमाग में आ रहा है कि परमिशन तो नहीं, ये तैयारी किस चीज की कर रहे हैं हम लोग। सो ऐसे करते करते मेरे पास लास्ट पासपोर्ट आया फ्राइडे इन द नाइट, इन द इवनिंग 4 o'clock। सैटरडे बंद है, सैटरडे संडे नॉर्थ गेट बंद होता है। मेरा एक फ्रेंड था जो रिपब्लिक डे परेड की परमिशन देता था, संजय दीक्षित, ही वॉज अ मेजर दैट टाइम। तो मैंने उसको फोन किया, संजय क्या तरीका है? तो बोलता है भाई फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे इट इज क्लोज्ड। अच्छा कुछ तो ऑप्शन होगा? बोलता कुछ नहीं, अब तो सिर्फ तेरी भगवान मदद कर सकता है। मैं बोला वाओ थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी यू नो। तो वो क्यू मिला एंड एक्चुअली एफर्ट तो हो ही रहे थे, और भी टीम मेंबर्स थे जो ट्राई कर रहे थे दिल्ली से परमिशन लेने का। उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी वॉज द प्रेसिडेंट एंड उनका कोई प्रोग्राम नहीं था उस समय दिल्ली में होने का। अच्छा यहां पे कनन दीदी, निजार भाई और सब जितने हैं पूरी टीम, अराउंड 80-90 पीपल की टीम डिस्कस कर रहे हैं मिनट बाय मिनट ये होगा वो होगा। और एल्गिन रोड सेंटर पे बिल्कुल बगल में बाबा का कमरा, मैं वहां बैठा था। मैं बाबा की, ये लोग मेरे को बार बार अंदर बुलाने, मैं इनको कब बताऊं कि एक्चुअली प्रोग्राम नहीं हो रहा है यू नो। हाँ नहीं, ऑल इज वेल तो नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे ये था कि ना छोड़ा नहीं था अंदर से कि अभी भी कुछ कर सकता हूं क्या, यू नो मैं कुछ कर सकता हूं क्या। तो बात करते करते अराउंड ये 5:15 का टाइम था व्हेन आई फाइनली गेव अप। आई सेड बाबा मैं ना अभी हाथ खड़े कर रहा हूं, आप जानो, और वो जो 70-80 लोग जो पिछले 1.5 महीने से तैयारी कर रहे हैं, है ना, कि मेरी जिम्मेदारी लॉजिस्टिक्स की है। और ये लॉजिस्टिक्स में बोला अच्छा फंसाया आपने लेकिन अब प्रोग्राम होगा तो आपका होगा, नहीं होगा तो भी आपका होगा, ठीक है, तब आगे आप संभालिए। दिस वॉज 5:15-5:16 के आसपास का टाइम था व्हेन आई फाइनली गेव अप कि मैं नहीं कर रहा अभी, है ना, अब आप कर रहे हो, आपका काम है, आपको करना है। तो जब वो फाइनली छोड़ा, है ना, विदिन 5 मिनट्स आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिल्ली कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, साइन हो गया। किसका? प्रणब मुखर्जी का साइन हो गया परमिशन पे। रियली? मैं बोला जल्दी जल्दी भेजो कैसे करके ना, तो उन्होंने मेल करा एंड देन आई वेंट इनसाइड। सो बाबा बोलते ना कि फाइनली यू हैव टू जस्ट गिव अप कि मैं कर रहा हूं, यू नो। जब वो छोड़ा तब ये वाला मिराकल हुआ। तो मिराकल इज ऑलवेज वेटिंग टू हैपन, ओनली इफ यू गिव अप दैट लास्ट बिट ऑफ सेइंग कि मैं कुछ कर रहा हूं। सो ऐसे बहुत सारे मिराकल्स हुए हैं लेकिन ये एक पर्टिकुलर वाला है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन थी, जहां पे मुझे बाहर से रिमाइंडर आया कि मेरे को क्या करना है, कि अब तो तुम्हें भगवान ही मदद कर सकता है तुम्हारी। आई सेड थैंक यू सो मच फॉर द रिमाइंडर और फिर मैं बैठ गया। मतलब दिस वॉज योगा फॉर अराउंड 15-20 मिनट्स। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉब्ली इस वजह से ये हुआ है ना, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं कुछ कारण रहा होगा। जब तक वो गिव अप नहीं किया तब तक वो नहीं हुआ। सो दिस इज हाउ बाबा टीचेस अस है ना, दिस इज हाउ ड्रामा टीचेस अस, दिस इज हाउ फैमिली टीचेस अस। क्योंकि वहां तो तैयारी कर रहे थे वो लोग, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था कि परमिशन नहीं है, बट द फेथ वॉज देयर उन 180-100 जनों का, ये प्रोग्राम तो होना ही है ना, बाप का प्रोग्राम है। सो ऐसे काफी छोटे छोटे अनुभव है। होप शांति, थैंक यू।